दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखे मेरी। बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले।
साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, गज की आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमणि के माध्यम से हम लोगों को इस संसार सागर से किस प्रकार तरकर परमपिता परमात्मा में जा सकते हैं, उसके लिए सुखमणि एक जहाज के समान है। जो व्यक्ति सुखमणि का ओट आसरा लेता है, अर्थात सुखमणि की कथा को सुनता है, सुनकर मन में चिंतन करता है, चिंतन करके अपने जीवन में घटाता है, वह व्यक्ति इस संसार सागर से तर जाता है। सुखमणि अर्थात परम सुख, परम आनंद, और परम आनंद परमात्मा का नाम है। जिस प्रकार से आकाश में पंछी को उड़ने के लिए दो पंखों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से परमात्मा के दरगाह में जाने के लिए व्यक्ति को दो पंख, भक्ति और ज्ञान, ये दो पंखों की आवश्यकता है। भक्ति में तू का महत्व है, भक्ति में प्रेम का महत्व है, भक्ति में प्रेमी अपने प्रीतम के आगे सब कुछ न्यौछावर करता है, सरेंडर करता है। भक्त कहता है तू तू करता तू भया मुझ में रहा ना हो आपा पर का मिट गया जित देखा तित। अभी अभी बहुत अच्छा कीर्तन सुन रहे थे आप, नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रह्लाद जपियो हर जैसे। ध्रुव ने प्रभु का सुमरण किया, अभी छोटा ही बच्चा है, बालक 5-6 साल का, जंगल की तरफ जा रहा है। उसकी माँ ने उपदेश किया, बेटा यदि इस राज सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हो तुम नारायण का सिमरन करो। जंगल की तरफ जा रहा है, उसे नारद एक संत मिलते हैं। नारद जी उनको उपदेश करते हैं, बेटा यदि तुम चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे, यदि तुम कुछ भी चाहते हो तो एक नारायण का सुमरण करो। और वो ध्रुव ने एक पांव पर खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके नारायण का सुमरण किया और उसे नारायण का दर्शन, और वो दर्शन करने के बाद जो उसकी मनोकामना थी वो पूरा हुआ। इसी प्रकार से प्रह्लाद को देखें, प्रह्लाद अभी छोटा ही है, उसका पिता हिरण्यकश्यप जिसको बहुत शक्ति का घमंड है कि मैं राजा हूँ, मैं इतना शक्ति वाला हूँ, मुझको कोई नहीं मार सकता, उसने भक्ति करके ब्रह्मा जी से बहुत शक्ति प्राप्त कर लिया था कि मैं ना रात को मरूं, ना दिन को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना आदमी से मरूं, ना पशु से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, इस तरह का उसने वर प्राप्त कर लिया था। लेकिन साध संगत जी, जो उपजियो सो विनश है, जन्मंग त मरणंग, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत अवश्य होगी। उसको ये घमंड था कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा कोई है तो वो मैं हूं। लेकिन प्रह्लाद, उसका पूर्व जन्म में बहुत भक्ति था, उस भक्ति के कारण अभी छोटा बच्चा है 4-5 साल का, और वह राम का स्मरण करता है। वो सिर्फ स्वयं राम का नहीं स्मरण करता, जब उसको स्कूल में डाल दिया गया तो जितने बच्चे हैं उसको भी राम का स्मरण कराता है। मास्टर को डांटा गया कि तुमको बताया गया है कि सारे बच्चों को ये पढ़ाया करो कि हिरण्यकश्यप जो है यही परमात्मा है, मेरा स्मरण करें। लेकिन मास्टर ने जा करके बताया कि आपका लड़का जो है प्रह्लाद यही लोगों को बिगाड़ता है, ये सबको राम का स्मरण कराता है। साध संगत जी, जो भक्त होता है वो डरता नहीं है, वह 24 घंटा प्रभु को हाजर नजर मानता है। और यही हुआ, स्वयं अपने पुत्र को कष्ट दे रहा है हिरण्यकश्यप, पहाड़ से फेंका गया, परमात्मा ने रक्षा किया, अग्नि में डाला गया, उसको कुछ बाल बांका नहीं हुआ। अंत में उसे जो है एक खंभे से बांध देता है हिरण्यकश्यप, और तलवार को नंगा करके उसको मारने के लिए दौड़ता है और कहता है बताओ यहाँ परमात्मा तुम्हारा किधर है। वहाँ पर प्रह्लाद, जिसकी भक्ति अटूट है, पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, जो परमात्मा को हाजर नाजर समझ के भक्ति करता है उसकी भक्ति पूर्ण होती है। वो प्रह्लाद कहता है इस खंभे में भी परमात्मा है, जिधर देखो वही है, उसके अलावे है कौन। जब उसका पिता कृपाण से उसको मारने के लिए चला, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उस दुष्ट को मार करके भगत की रक्षा की। जब कोई भक्त सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार, सारे द्वार को छोड़ करके एक वाहेगुरु का ओट आसरा लेता है, तो वाहेगुरु उसको 24 घंटा उसको बचाते हैं। ऐसा समझो कि परमात्मा उसके लिए 24 घंटा हाजर नजर होते हैं, जो प्रभु का हो जाता है। वही सारा कुछ आज सुखमनी के माध्यम से साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भक्ति का क्या महत्व है। यदि कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति से परमात्मा का स्मरण करे, और जब सत्संग में आवे तो यहाँ गुण लेने के लिए आवे। ऐसा ना हो कि सत्संग में आकर के भी यदि चूक जाओगे तो तुम्हारा कहाँ कल्याण होगा। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। श्लोक तजह स्यानप सुर जनहो सिमरव हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं तजह स्यानप सुर जनहो, हे अच्छे लोग भले लोग, यदि तुम ये चाहते हो कि इस शरीर से परमात्मा को प्राप्त कर लें, मृत्यु से पहले पहले जो नारायण को प्रकट कर ले हृदय में, तो तजह स्यानप सुरजनो, जो तुम्हारी मन की चलाकी है उसको त्याग दो। आज तक जिन लोगों ने प्रभु को पाया है वो अति सरल लोग थे। बहुत सरल लोग थे। चतुराइना चतुर्भुज पाइए, चतुर लोग उसको नहीं पा सकता है। भोले भाई मिले रघुराया, जो भोले लोग हैं, जो सरल लोग हैं, जिसका अंदर बाहर निर्मल है, वही व्यक्ति वाहेगुरु को प्राप्त कर सकता है। गुरु महाराज हम लोगों को हुक्म कर रहे हैं और साध संग जी जब कथा सुनोने तो अपने को जीवन बदलने के लिए सुनना है। ये नहीं कि सारा कथा में ये ढूंढते रहो कि क्या नुक्स है, वो व्यक्ति जो है खाली हाथ चला जाता है। एक समय की बात है, एक हंस और एक बगुला, वो दोनों की दोस्ती हो गई। एक दोनों ने एक दूसरे को निमंत्रण दिया, इनवाइट करते हैं ना, तो बगले ने कहा कि ऐसा करो, हम गरीब आदमी हैं, पहले तुम मेरे पास आओ। तो हंस जी बगले के पास आया, वहां देखता है कुछ खाने के लिए उसके जैसा था नहीं, छप्पड़ था छोटा सा। बगले को कहता है हंस के, मेरे खाने लायक यहां कुछ नहीं है, तो आज मैं जो है व्रत रखूंगा। लेकिन इधर उधर देखते देखते उसको एक मोती मिल गया और उसको मोती खा करके पानी पी करके संतोषपूर्वक रहा और आपस में प्रेम का वार्तालाप करके चला गया। और हंस ने इनवाइट किया कि तुम आना हमारे पास मानसरोवर। वो बगुला वहां कह रहा था कि तुम सिर्फ एक मोती खा के और पानी पी करके सिर्फ संतोष कर लिया, यहाँ पर इतनी मछियाँ हैं, इतनी सारा कुछ है, कीड़े मकोड़े, कुछ तो खा लो, यहाँ तो भंडार रखा हुआ है। कहते नहीं, मेरा भोजन नहीं। जब हंस के पास गया बगुला तो हंस ने उसको थाली में हीरे जवाहरात मोती माणक एकदम ढेर लगा दिया कि खाई जाओ, तुमने आज तक कीड़े मकोड़े खाया है, आज तुमको मोतियों का भंडार लगा देता हूं। लेकिन वो मान सरोवर में जाकर के भी बगुला जो है वहां पर मछियां डड्डू कीड़े मकोड़े ही खाता है। मान सरोवर में जाने से क्या होगा, यदि हमारा खुराक ही वही है तो वो हंस बेचारा क्या करे। इसलिए सत्संग जी, यह जो सत्संग भवन है नानक सर सत्संग भवन, एक मान सरोवर है और यहाँ कथा रूपी अमृत कीर्तन रूपी अमृत सदैव सुबह से शाम तक चलता रहता है। हमारी प्रार्थना है कि यहाँ हंस बन के आए और कथा और कीर्तन रूपी मोती को लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि इस अमोलक जिंदगी को यहाँ पर भी निंदा चुगली लोगों को दोष का क्या है, साक्षात गुरु नानक देव जी को भी लोग पहचान नहीं पाए। कोई कहे भूतना, कोई कहे बेताला। एक बहन नानकी राय बुलार और 5-10 लोगों को छोड़ करके जो साक्षात परमात्मा इस धरती पर प्रकट हुए उनको लोग नहीं पहचान पाए। साक्षात भगवान कृष्ण को शिशुपाल गालियां दे रहा है और फोर्ड का जो मालिक है अंग्रेज वो कृष्ण का भक्त है। जब वृंदावन जाता है तो पूरा शरीर खोल देता है, छोटा सा एक कपड़ा पहन लेता है और वृंदावन की धरती में लौटता है, सारा सारा दिन लौटता है। वो लोग पूछते हैं तू पागल हो गया, कहते नहीं, हमारा जो भगवान है कृष्ण इस धरती पर लौटे हैं, चले हैं, उनकी चरण रज जो है अभी भी इस धरती पर है। जब इस धरती पर लौटता हूं तो मुझे कृष्ण का अनुभव होता है। इसलिए साध संगत जी, हमें तो इस जगह आकर के ज्ञान और भक्ति इसको प्राप्त करो, जीवन को सफल करो, तभी तुम्हारा जो है जिंदगी सफल हो सकता है। इसीलिए आज श्लोक में गुरु महाराज शुरू में कह रहे हैं कि तजह स्यानप सुरजनह, हे भले लोगो, चतुराई न चतुर्भुज पाइये। बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है, बुद्धि से संसार मिलता है, हृदय से परमात्मा मिलता है। बुद्धि में विचार होते हैं, हृदय में प्रेम होता है। यदि तुम प्रभु को चाहते हो, गुरु नानक देव जी का दर्शन करना चाहते हो, साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी को अपने हृदय में प्रकट करना चाहते हो तो तजह स्यानप सुरजनह, सिमरह हर हर राय। जो सबको हरा करता है, जो सबको सुख देता है, जो सबको आनंद देता है वाहेगुरु परमात्मा, उसको तुम सिमरो और एक आस हर मन रखो। मन में एक ही आस रखना है। आदमी बहुत चित्तवान है, जब मनुष्य का चित्त बहुत तरफ जाता है तो एक को नहीं प्राप्त करता। एक को वही प्राप्त कर सकता है जो सब तरफ से असहाय होकर के, सबका आशा छोड़ करके एक वाहेगुरु निरंकार का आशा रखता है, तो उसको सामने ही प्रभु दर्शन देते हैं। पहले द्रौपदी जब उसका शिशुपाल इज्जत लूट रहा है तो वो आशा करती है कि भीम बचाएगा, अर्जुन बचाएगा, लेकिन अंत में सबका आशा छोड़ करके एक क्षण के लिए भगवान का आसरा करती है, भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए जब तक तुमको संसार की आशा है कि पति साथ देगा, पत्नी साथ देगा, लड़के साथ देंगे, दोस्त साथ देंगे, संबंधी साथ देगा, तब तक प्रभु तुमको साथ नहीं देगा। लेकिन सबका आशा छोड़ करके एक आस हर मन रखो। यदि तुम सबका आशा छोड़ करके एक हरि की आशा मन में बसाओगे तो परमात्मा प्रकट होंगे। वो परमात्मा दूर नहीं है, शरीर दूर है, इंद्रियां दूर है, मन दूर है, उससे भी जो नजदीक है वो वाहेगुरु है। जल थल महियल पूरिया रविया विच बना, सोप्रभ चित्त न आवई कितड़ा दुर्घना। जो दूर है वो मुझे याद होता है, जो अति नजदीक है वो हमको भूला हुआ है, यही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए साध संगत जी, चतुराई को छोड़ करके कथा को अति श्रद्धा पूर्वक, टोटल एक्सेप्टेंस, जो कथा में मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कथा मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे एक बांसुरी होता है ना, इस बांसुरी में फूंकने वाला बोलने वाला कोई और है, तो आप सबसे उत्तम हर की कथा, ये सुखमणि की कथा जीवन को बदलने के लिए सुनना है, तर्क वितर्क के लिए नहीं, बुद्धि की एक्सरसाइज करने के लिए नहीं, इसको हृदय से सुनना है, तभी तुमको वाहेगुरु का दर्शन होगा। और मैं कितने बार लोगों को बता चुका हूँ कि जो व्यक्ति धन का दान नहीं दे सकता या और कोई दान नहीं दे सकता, तो कम से कम जो व्यक्ति इस सत्संग में एक व्यक्ति को भी लाएगा, हम उसके लिए प्रभु के आगे अरदास करेंगे, हे नारायण इस सत्संगी का आप ख्याल रखो। और एक दो लोगों का अरदास किया करना तो ईश्वर ने था, उसके घर में खुशियां ही हो गया। अभी महीने की बात है, उसने 3-4 सत्संगी को लाया था। तो एक हमारे जीवन में कंपटीशन हो जाए, कोई बिजनेस का कंपटीशन होता है, आप एक ही भावना रखो कि आप जपह अवरह नाम जपावे, आप सत्संग में आओ और लोगों को भी नानक सर से जोड़ो, क्योंकि यहाँ निरोल भक्ति है, यहाँ कोई संसार की बात नहीं है। तजह सियानप सूर्य न हो सिमरह हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। जीवन में 3 चीजें हैं जो दुख देता है। एक है दुख, दुख है क्या कि कल क्या होगा, कल मौत ना हो जाए, कल पैसा नहीं होगा तो टैक्स कैसे देना है, कल पैसा नहीं होगा तो रोटी किस तरह खाएंगे। हर एक व्यक्ति को भविष्य का चिंता है। 3 चीजें मनुष्य को दुख देता है, एक मृत्यु का भय और एक भ्रम। भ्रम के संसार सत्य है या असत्य है, परमात्मा है भी कि नहीं है, कि सिर्फ जो कथाकार लोग बताते हैं, कथाकारों का सिर्फ कथा करने के का विषय ही तो नहीं है। ये मनुष्य को संशय है और तर्क भी देता है लोगों के आगे, यदि परमात्मा हो तो दर्शन ना दें। लेकिन साथ संगत जी, जरूरी नहीं कि जो आंखों से दिख जाए वही सत्य हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आंखों से दर्शन नहीं होता लेकिन फिर भी होता है, जैसे हवाएं, हवा आंखों से नहीं दिखता लेकिन फिर भी महसूस तो करते हैं ना हम लोग। इसी तरह से शरीर में सुख दुख, जब शरीर को दुख होता है या सुख होता है, पेट में दर्द होता है तो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव तो होता है। इसीलिए जो नारायण प्रभु परमात्मा वाहेगुरु हैं वो आंखों का विषय नहीं है, लेकिन भक्त उसको अपने हृदय में ही अनुभव करते हैं। और यदि भक्त चाहे तो परमात्मा को सगुण रूप से भी प्रकट कर सकता है अपनी भावना के अनुसार, बशर्ते कि एक आस हर मन रखो, एक की आशा, एक का ओट, 10 का ओट रखने पर वो नहीं आता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। भरम है कि जगत सत्य है या ईश्वर सत्य है, और दुख है कि कल क्या होगा, और दुख क्या है कि मैं मर ना जाऊं, और दुख क्या है कि कल आज हमारा समाज में प्रतिष्ठा है, कल वो प्रतिष्ठा खत्म ना हो जाए। भविष्य की हमें चिंता है और जो बीत गया है पास्ट है उसका पश्चाताप है कि हम ऐसे रहते तो ऐसा होता। हम भूत और भविष्य, पास्ट और फ्यूचर में हमारा मन डोलता रहता है, कभी वर्तमान में हम नहीं जीते। वर्तमान में जीने का ढंग क्या है, कि जो प्रभु करता है वो हमारे लिए आज तक अच्छा किया है, आगे भी अच्छा करेगा। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो आत्मा में जीता है, जो आत्मा में जीता है वो परमात्मा में जीता है। इसका रहस्य ध्यान के क्लास में बताई जाती है और सोमवार से दोबारा शुरू हो रहा है। जो लोग हैं वो पहले नाम लिखा लिया करें, वो संडे के दिन फिर रिक्वेस्ट करते हैं, उस दिन जो है लोग ज़्यादा हो जाते हैं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं अष्टपदी। मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जब तक द्रौपदी आशा करती है भीष्म पितामह, वो जो बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे थे, जब तक वो संसार की आशा करती थी तब तक वो दुखी रही, लेकिन सबका आशा छोड़ करके एक भगवान का आशा करी, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गया। यदि तुम ये चाहते हो कि इसी क्षण आनंदित हों, भविष्य में नहीं, इसी क्षण आनंदित हों, हमारा जीवन सुखमय हो जाए, आनंदित हो जाए, आनंद की बाढ़ आ जाए हमारे जीवन में, तो गुरु महाराज हुक्म करते हैं मानुक की टेक बिरथी सब जान। किसी मनुष्य पर ये आशा न रखो कि ये सुख देगा मुझको। सच्चाई तो ये है कि जिससे तुम सुख की आशा कर रहे हो वो तुमसे सुख की आशा कर रहा है। पति सोचता है कि मुझे पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी सोचती है पति से सुख मिलेगा, पुत्र सोचता है कि माँ से सुख मिलेगा, और माँ सोचती है कि जब लड़का हमारा जवान होगा तो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लेकिन जब बुढ़ापा आता है और जब लड़के की शादी हो जाती है, पत्नी उसके कान में मंत्र पढ़ा देती है कि हम दोनों अलग रहें। ये माता पिता बहुत बोलते हैं, वृद्धावस्था हो गया, इनको चाहिए गुरुद्वारे में जाके भजन करना है, बहुत बोलते हैं। तो या तो मैं तब रहूंगी या अलग रहो, और या ये सारा दिन गुरुद्वारे में बैठे रहे, घर ना आए। इसलिए साध संगत जी कभी ये मन में भरोसा न रखो कि पुत्र जवान होगा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। आज तक नहीं बना है और ना आगे कोई बनेगा। कोई करोड़ों में कोई श्रवण होता है, श्रवण जो पुत्र जो कि माता पिता को सेवा किया, वो करोड़ों में कोई, कोटन में नानक हो। इसलिए यदि आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो ने, तो मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, एक वाहिगुरु का आशा रख। और इस जगत में साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी से बड़ा और कोई ग्रंथ नहीं है, कोई गुरु नहीं है। एक सिख के लिए एक फर्ज है कि गुरु वाला हो जाए। गुरुमंत्र हीणस्य जो प्राणी कुकर सुकर गर्धव भ्रष्ट ने, वाहेगुरु गुरुमंत्र लेकर के अमृत छकने। जो सिख अमृत नहीं छका वो सिख कहलाने का अधिकार ही नहीं उसको। बहुत से लोग आते हैं, नाम बताते हैं, हमारी बहनें कौर नहीं बताती तो मैं संतुष्ट नहीं होता, या कोई हमारे सिख भाई आते हैं नाम बताते हैं सिंह नहीं बताते तो भी संतुष्ट नहीं होता। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने चार पुत्रों को, पिताजी को, दादाजी को, सर्वस्व हमें न्यौछावर किए हैं इस सरदारी के लिए। मैं तो कहता हूं हमारा सिखी इतना ऊंचा हो कि अंग्रेज भी सिख बने, हिंदू भी सिख बने, ईसाई भी सिख बने, हमारा इतना ऊंचा सोच, इतना जीवन पवित्र हो कि हर एक लोग आकर्षित हो और राज कलेगा खालसा आकी रहे नर। यह जो स्लोगन है, यह जो उद्घोष है, हर एक माताओं को, हर एक बहनों को, हर एक हमारे भाई को ये संकल्प पूर्वक जीना चाहिए कि मृत्यु से पहले पहले हम गुरु वाले हो जाए, और उसके लिए अमृत छकना बहुत जरूरी है। मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, दद्दा दाता एक है सबको देवन हार, देंदे तोट न आवई अगनत भरे भंडार। गुरबानी की पंक्ति कहीं पर बोलने में गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा कर दें, क्योंकि मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे अभ्यास पर ज़्यादा भरोसा है। जो नाम का अभ्यास है, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, जैसे कबीर जी को देखो, कबीर जी कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, हमने सारी जिंदगी कागज और कलम को नहीं छुआ, लेकिन कबीर जी ने जो बोले हैं, आज यूनिवर्सिटी में रिसर्च होता है, पीएचडी लोग करते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं इनकी वाणी का अंत नहीं पा सकता, और स्वयं कबीर जी कागज कलम नहीं छुए। जो व्यक्ति एक को जान लेता है, जो व्यक्ति एक को पा लेता है, जो एक का सुमरण करता है, उसको अनेक का सुमरण की आवश्यकता नहीं होती, और जो एक को छोड़ के अनेक का सुमरण करता है, अनेक मिलता नहीं है, एक का अवसर भी खो बैठता है। इसलिए साध संगत जी, मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, मात्र एक भगवान ही देने वाला है और कोई नहीं देने वाला, और भगवान भी तुम्हारे कर्मों के अनुसार जो तुम्हारे भाग्य में है वही देगा। जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, जिसको परमात्मा देता है ना, उसी से व्यक्ति रजदा है, मांग मांग करके कोई रजदा नहीं, जितना मांग लो, सारा संसार भी मांग लो, व्यक्ति रजदा नहीं। सिकंदर ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं, मरते वक्त कहा था कि मुझको जो है दोनों हाथ बाहर कर देना और मुट्ठी को खुला रख देना, ताकि लोगों को ये ज्ञान हो जाए कि मैंने इतना सारा कुछ इकट्ठा किया लेकिन खाली हाथ जा रहा हूँ। भरा हुआ हाथ सिर्फ भक्त जाता है, जिज्ञासु जाता है, जो गुरु वाला हो जाता है उसी की मुट्ठी भरी होती है, वरना सबकी मुट्ठी खुली होती है। साध संगत जी, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। नारद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हरि का भगत भक्ति करता है, सुमरण करता है वाहेगुरु का, वो तृप्तो भवति, वो अपने जीवन में तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, वो उसको कुछ चाहिए नहीं, ऐसा जीवन हो जाता है, तृप्तो भवति। और कहते हैं सिद्धो भवति, सिद्धो भवति का भाव ये है कि जीवन का मनोरथ है सुखमणि की प्राप्ति, तो जिस भक्ति को सुखमणि प्राप्त हो गया उसका जीवन सिद्ध हो गया। तृप्तो भवति, सिद्धो भवति और अमृतो भवति। परमात्मा का नाम अमृत है, परमात्मा को नाम, परमात्मा के नाम को, वाहेगुरु के नाम को पा करके वो अमर हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। जब परमात्मा किसी को देता है ना, तो व्यक्ति रज जाता है और फिर उसके अंदर तृष्णा नहीं रहती, मांग नहीं होता, वो मांगता नहीं फिर, क्योंकि वो उसका जीवन जो है आनंदित हो जाता है। मारे राखे एको आप, मानुक कै किछ नाही हाथ। वो परमात्मा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ एक बहाना बनता है। अभी अभी देखो पंजाब में, खास करके लुधियाना शहर, ये दास भी लुधियाना शहर में रहता है, एक बहुत अच्छा उभरता हुआ गायक होनहार है जी, उसके ऊपर पंजाब को मान था, पंजाब ही ने पूरा देश को मान था, स्मित सिंह। वो आदरणीय स्मित सिंह का एक बहाना हुआ और पानी में डूब गया बेचारा। भावे कोई बहाना हुआ, बहाना बनता है मौत का। कोई कह जा रहा था, चलते चलते जो है किसी से ठोकर लगा, गिर गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, सोया हुआ था, उठा ही नहीं। मारे राखे एको आप, जिसको परमात्मा मारे उसको इस जगत में कोई रख नहीं सकता, और जिसको वो रखना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। जाको राखे साइया, आगे तो याद ही आप लोगों को, मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नाही हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, मनुष्य के हाथ में है क्या, तो अहंकार, और इस अहंकार के कारण उसका पांव नहीं लगता धरती पर। एक समय की बात है, एक शेर था, उसने पूर्व जन्म में बहुत भक्ति किया था, मनुष्य था वो, बहुत भक्ति किया था, लेकिन लास्ट में उसको अहंकार हो गया अपनी भक्ति का। अहंकार तो किसी भी चीज का माड़ा है, समझे ना, भक्ति का हो, धन का हो, जवानी का हो, सुंदरता का हो, हर जी अहंकार ना भावे। उसको अहंकार हो गया और कोई महात्मा आ रहा था, उसके साथ उसने बदसलूकी किया। महात्मा जो है साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोलिया वृथा ना जाए। उसने कहा जा तू पशु बन जाए, ओ जी उसकी मौत हो गई और वो उसका जो जूनी है शेर के जूनी में पाया। वो शेर तो बन गया, लेकिन पूर्व जन्म में जो भक्ति किया था वो भी थोड़े व्यर्थ जाना था, वो और शेर की तरह नहीं, वो एकांत रहता है, कम बोलता है और ध्यान करता है परमात्मा का शेर, और अपने मांद में संतुष्ट होकर रहता है। कोई पशु पंछी जानवर आप ही आ जाए उसके पास तो खा लेता है, नहीं तो मस्त रहता है। एक समय की बात है, उसके सामने एक गौ आ गया, शेर जब उसको खाने लगा तो गौ कहती है देखो मैं तो तुम्हारा भोजन हूं, लेकिन कुछ समय के लिए मेरे ऊपर दया करो, मेरा एक छोटा बच्चा है, अभी तुरंत ही पैदा हुआ है, कुछ समय के लिए मुझे छोड़ दो, जब बच्चा मेरा जवान हो जाएगा फिर मुझको खा लेना। और जो यहां पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि मारे राखे एको आप, ये सच है। वो गौ पूछती, वो शेर कहता हाँ हाँ मैंने पूर्व जन्म में जो भक्ति किया उससे हमें इतना तो ज्ञान है कि जो भी करता है परमात्मा ही करता है। तो कहते मुझे कोई कहानी सुनाओ, कहते कहानी सुनाता हूं तुमको, ठीक से सुनो, क्योंकि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है ना कि पशु पंछी भी तर जाते हैं, प्रभु की नाम की इतनी महिमा है। वो एक कहानी सुनाता है कि एक व्यापारी नौका से जा रहा है, उसके साथ उसकी पत्नी भी है और एक छोटा सा बच्चा अभी 2-4 दिन का ही पैदा हुआ है, वो भी साथ जा रहा है नौका से। जाते जाते आगे से तूफान आया, जो व्यापारी था वो पानी में डिग करके मर गया, वो नौका कुछ आगे गया, उसकी पत्नी भी डिग के मर गई। वो जो छोटा बच्चा था वो किसी तरह से अंगूठा अपना चूस रहा था, वो बच गया उसमें। वो नौका जब किनारे लगा, वहाँ पर एक राज महल था, ऊपर से रानी देख रही थी इस सारा जो घटनाक्रम को देख रही थी। रानी नीचे उतरती है और उस बच्चे को लेकर के राजमहल में ले जाती है। उसका कोई लड़का नहीं था, कोई लड़का नहीं था उसका। उसने उसको गोद ले लिया, उसको अच्छी तरह पालन पोषण किया, जवान हुआ, उसका शादी कर दिया और बहुत अच्छा जो है सो उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। अचानक एक दिन वो राजकुमार छत के ऊपर घूम रहा था। घूमते घूमते जिसको किनारा कहते हैं, किनारे के ऊपर खड़ा था, वह अचानक उसका नज़र ऊपर पड़ा और आगे की तरफ बढ़ा, वो गिर पड़ा। जब नीचे गिरा, नीचे जो है सो काफ़ी नीचे था, 30-40 फुट नीचे गिर पड़ा, उसका सिर से पत्थर टकराया, मर गया। एक बहाना बना और चला गया। वो शेर कहता है गौ को, देखो कि जब परमात्मा ने उसे बचाना था तो पानी में तूफान में उसे बचा लिया, और जब मारना था तो एक बहाना बना और मार दी। ये दोनों प्रभु के हाथ में है। ये शेर ने जब कहानी सुनाया गौ को, कहते हैं ठीक है, अब तो मैं देख ही रहा, गौ कहती है कि मैं देख ही रही हूँ कि मेरी मौत सामने है, मेरी मौत हो ही जानी है, तो मैं ऐसा करती हूँ, एक बार अपने बछड़े को दूध पिला के आती हूँ, उसको प्यार करके फिर मुझको तुम खा लेना। वो शेर कहता है ठीक है, तुम जाओ अपने बच्चे को दूध पिला के। वो गौ जी दूध पिला करके फिर थोड़ा प्यार करती है, गले लगाती है अपने बच्ची को, और फिर गौ आ जाती है। शेर देखता है कि ये वचन का पक्का है, ये चाहता तो भाग भी जाता लेकिन नहीं, ये अपने वचन पर विश्वासी है। उसके वचन को देख करके, उसके भरोसा को देख करके शेर कहता है कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम जाओ, आज से तुम निडर होकर के विचरण करो। सत्संग जी, जिसको परमात्मा रखे उसको कौन बचा सकता है। इसमें हुआ क्या कि उसके मन में एक दया पैदा हुआ, वो जो दया शेर के अंदर आया ये प्रभु की कृपा से आई। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे उपदेश कर रहे हैं कि मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नाही हाथ, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। इसीलिए सत्संग जी, परमात्मा के हुक्म को बूझो तभी सुख मिलेगा, और उसका नाम जपने से ही, उसका नाम कंठ में परोलो माला की तरह, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक विघ्न न लागे कोई। जो व्यक्ति मन करके 3 बार सिमर सिमर बोले हैं गुरु महाराज ने, मन करके भी सिमरन करना है, वाणी करके भी सिमरन करना है, शरीर करके सेवा करके सिमरन करना है। जो परमात्मा को मन वाणी और तन से सिमरन करता है उसको गुरु महाराज कहते हैं नानक विघ्न न लगे कोई, उसको इस संसार में कोई विघ्न नहीं लगता है, वह आनंदित रहता है। और जो व्यक्ति परमात्मा का सिमरन करके एक वाहेगुरु का ओट आसरा लगता है उसका लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।